भगवान का जो जन्म है और भगवान का जो कर्म है, इसको जो आदमी तत्व से जान जाता है, जानने मात्र से ही फिर संसार में दुख का घर जो ये पुनर्जन्म है उसको नहीं प्राप्त होता, तो भगवान कहते वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो जन्म का तत्व क्या है और कर्म का तत्व क्या है कि जिसके जानने से मनुष्य एकदम मुक्त हो जाता है, किसी करना नहीं पड़ता। यहां जानने की बात है, तो उसका जो तत्व है कि क्या है, जो हम लोग भी जान जाएं, तो समझो कि भगवान कहते हैं कि वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होकर के मुझको प्राप्त हो जाता है। पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता इससे यह मालूम होता है तो क्या वो नष्ट हो जाता है? बोलते नहीं, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो जन्म की दिव्यता भगवान ने उसके पूर्व में बतलाई और कर्म की दिव्यता उसके आगे बतलाती। ये जो नौ का श्लोक है उसके पूर्व के श्लोकों के बीच के मां भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता बतलाई, क्योंकि जन्म कर्म से, कर्म जो है, कर्म एक प्रकार से है, पहला शब्द आया जन्म, उसके बाद शब्द आया कर्म। तो जन्म की दिव्यता और कर्म की दिव्यता, इसको जो आदमी तत्व से जान जाता है, तो अब तत्व से जानना बाकी रहा। इस वास्ते जन्म की दिव्यता, जन्म का प्रकरण कहां से चला, इस चौथी अध्याय के पांच के श्लोक से। तो चौथी अध्याय के पांच के श्लोक में क्या बात आई कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तरचार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी और न तुम वेद परम हे परम तत् अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, उन सब को मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। इसमें भी तत्व समझना चाहिए कि अर्जुन तू नहीं जानता और मैं जानता हूं, तो अर्जुन में और भगवान में क्या फर्क। तो अर्जुन जो है, समझो कि भगवान का भक्त है, उसकी जीव संज्ञा है, और भगवान की ये सो भगवान संज्ञा परमात्मा है। भगवान तो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, इसलिए भगवान सब जानते हैं। अर्जुन के जो बहुत से जन्म हो चुके उनको ही नहीं, सारी दुनिया के जितने जन्म हो चुके उनको भगवान जानते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मानतु वेदन कश्चन। वेदाहं समतीतानि, जो जितने प्राणी पहला हो चुके हैं उन सब को भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, और वर्तमान के मां जितने प्राणी हैं उन सबको भी मैं जानता हूं, और भविष्य में जो होंगे उनको भी सबको मैं जानता हूं, किंतु मान तू वेदन प्रश्न है, मुझको कोई नहीं जानता। तो भगवान कहते हैं कि तेरे और मेरे पूर्व में जितने जन्म हुए हैं, जितने अवतार हुए हैं, उन सबको मैं जानता हूं। क्यों? कि मैं परमात्मा हूं, मैं साक्षात ईश्वर हूं, सर्वज्ञ हूं, इसलिए मैं जानता हूं, और तू अल्पज्ञ है इसलिए तू नहीं जानता। मैं जानता हूं इस बात को समझाने के वास्ते आगे का श्लोक है, कौन सा? शिक्षक का। उसमें क्या कहा? अजोपि सन्नद्यात्मा भूतानाम स्वरूपी सं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय और संभवान्यात्माया। भगवान में क्या विशेषता है इस बात को भगवान कहते हैं कि मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, भूतों का ईश्वर हुआ, अपने प्रकृति को अपने वश में करके, कंट्रोल में करके के, और आत्ममाया संभवामी, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। वास्तु के बीच के मां मेरा जन्म या मृत्यु मेरे ऐसे नहीं होते, मैंने से रही तुम, मैं मेरा जन्म होता न मेरी मृत्यु होती। तो अजोपी सन के मां एक स्वार से उसको समझना चाहिए अति और जो सम शब्द है ये बतलाता है कि सन माने हुआ, अति माने भी, अज हुआ भी, तो अज हुआ ही इस भाषा का क्या रहस्य है कि मैं अज हूं और जन्मता का प्रतीत होता हूं, जन्मता नहीं अज हुआ भी जन्मता सा प्रतीत होता हूं, किंतु वास्तु के मां में जन्मता नहीं, अपि और सुन का ये भाव। और अध्यात्मा अविनाशी हुआ भी विनाश होता सा लोगों को दिखता हूं। अद्भुता नाम इस रूपी सन अपि सन सबके साथ में लिखा हुआ है, और भूतों का ईश्वर हुआ भी और मनुष्य के रूप में दिखता हूं। तो संपूर्ण भूत प्राणियों का ईश्वर ईश्वर होता हुआ भी और मनुष्य दिखता हूं। प्रकृति जो है उसको अपने बस में करके, उसका अधिष्ठाता होकर करके और अपनी योग माया से अपने प्रकट होता हूं, अपने आप को प्रकट कर देता हूं। तो अब ये ख्याल करना चाहिए कि इसके बीच के मां जन्म की दिव्यता बतलाई, जन्म की अलौकिकता बतलाई। हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते कि अज हुआ, अविनाशी हुआ और समझो कि ईश्वर हुआ और मैं मनुष्य प्रतीत होता हूं, और प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर करके और अपने योग माया से प्रकट होता हूं। हम थोड़ा ही कह सकते हैं, ईश्वर जो है बिल्कुल स्वतंत्र और हम लोग परतंत्र। प्रकृति जो है वो ईश्वर की शक्ति और ईश्वर के अधीन, नटनी की माफक ईश्वर जैसे नचाता वो नाचती है, और हम लोगों को प्रकृति नचाती है जैसे हम लोग नाचते, तो कितना फर्क हो गया। ईश्वर जो है अपने स्वतंत्र ऐसे संसार में प्रकट होते हैं, और हम लोग इस संसार में जो प्रकट हुए हैं आए हैं वे पूर्व के किए हुए पुण्य और पाप के अनुसार हम लोगों का जन्म होता है। ईश्वर का जन्म कोई पुण्य पाप से नहीं होता, वह तो नित्य मुक्त ज्ञान बोध स्वरूप है, वह स्वतंत्र है। एक तो सिपाही जो है वो एक प्रकार से कलेक्टर साहब जो है हुक्म देता है वैसे ही वो नाचता है। कलेक्टर तो बहुत ऊंचे दर्जे का है, एक दरोगा जो है थानादार जो है उसके हुक्म के मार रहता है। फिर कलेक्टर की तो बात ही क्या, उसके हुक्म में तो दरोगा भी रहता है, और सिपाही को हुक्म देता है कलेक्टर या कोई हाकम कि जाओ अमुक धनी को, अमुक लखपति को, करोड़पति को तुम हथकड़ी डाल करके ले आओ। तो वो 10 रुपया महीना वाला सिपाही उसके हथकड़ी डाल करके ले आता, उसके हुक्म के बीच के मन। तो हमारे ऊपर तो, हम लोगों के ऊपर तो वो सिपाही मालिक है, हम तो एक प्रकार से डरते कांपते हैं, संसार के साधारण मनुष्य तो, और उसके वो हुक्म में रहता है। तो यह प्रकृति जो है ईश्वर की शक्ति माया, वो ईश्वर के हुक्म से नाचती है, उसके तो वो अधीन होकर रहती है, और हम लोग जितने संसारी आदमी हैं वे प्रकृति के वश में पड़े जैसे वो नचाती है वैसे नाचती। तो रात दिन का फर्क हो गया ना हम लोगों के और ईश्वर के, हम लोगों के जन्म में और ईश्वर के जन्म में रात दिन का फर्क है। देखो ख्याल करो, भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के बीच के मां ये बात दिखलाई कि जिस समय के बीच के मां भगवान श्री कृष्ण जी अपने कारागार के मां प्रकट हुई, कौन से स्वरूप से है, वैष्णव स्वरूप से थी, शंख चक्र गदा पद्म ऐसे दिव्य रूप से थी, मनुष्य रूप से नहीं प्रकट। उसको देख करके वसुदेव जी और देवकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आप इस रूप को समेट लीजिए और बालक का रूप धारण करिए, नहीं तो कंस हमारे को तंग करेगा, तकलीफ देगा। भगवान ने कहा कि मैं इस रूप को क्यों धारण किया कि आप लोगों को यह मालूम हो जावे कि साक्षात परमात्मा ने हमारे घर में अवतार ले लिया, इसलिए मैंने अपना असली रूप धारण करके दत्तदर्शन दिया। खैर अब आप कहते हो तो मैं वैसा ही बन जाता हूं। और बहुत सी बातें कही कि इस प्रकार से इस समय के बीच के मां संजोग की जसोदा के यहां एक लड़की पैदा हुई है, और वसुदेव जी को कहा आप मुझको वहां ले जाकर रख दो, उस लड़की को यहां ले आ। और वैसा ही उन्होंने किया, और वे ले गए। उस समय के बीच के मां समझो कि कारागार के ताले अपने खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई, गणना खूब बढ़ी। तो भगवान ने सोचा कि तेरे चरणों के लिए बढ़ रही है, चरण लंबे कर दिए, तो चरणों को छू करके जमुना शांत हो गई, उनको रास्ता मिल गया। वहां आगे जाकर के देखे तो यशोदा को निद्रा आ गई, तो कृष्ण जी को तो वहां छोड़ दिया और उस लड़की को लेकर के चले आए। इस प्रकार से बहुत विस्तार की कथा है। अपना तो इतना ही प्रयोजन है यहां कि भगवान वहां प्रगट हुए विष्णु रूप से थी, और फिर अपने उस रूप को आपने समेट लिया यानी अंतर्धान हो गए, और फिर बालक के रूप में प्रकट हो गए। तो अब ये विचार करना चाहिए कि भगवान जो विष्णु के रूप से प्रकट हुए थे, दिव्य रूप से देव रूप से थी, वो रूप कहां से तो आया कहां गया, तो प्रकट हुए और समझो अंतर्धान हो गए, जन्मे मरे नहीं। इसी प्रकार से थी ये जो इस रूप में कृष्ण के रूप में भी प्रकट हुए और फिर आपने अंतर्धान हो गए। आप देखो भगवान जब परलोक को सिधारे श्री कृष्ण जी, तो भागवत में ये दिखलाया है इसी शरीर से थी अंतर्धान हो गए, सह शरीर चले गए, उनका शरीर रहा नहीं। क्यों? इसलिए कि फिर भी भविष्य में भक्त लोग इसी रूप की आराधना करेंगे तो फिर मैं आकर के दर्शन दूंगा। तो इसलिए भगवान का जो विग्रह है वो एक प्रकार से अपने यहाँ इस देश में हमारे नहीं रहा, नहीं तो एक प्रकार से आपने उसके शरीर की कोई दाह क्रिया करते, ऐसी बात नहीं। और यही बात भगवान श्री राम के विषय में आती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया, और जन्म लेकर के ये जो शरीर है उसके विषय में तुलसीदास जी तो कुछ नहीं कहते, किंतु वाल्मीकि रामायण के मां कथा आती, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से कथा आती है उत्तरकांड में, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में, कि वहां ब्रह्मा जी के भेजे हुए जो काल भगवान आए, और काल ने आकर के कहा कि मैं एकांत में बात करना चाहता हूं श्री राम से। राम ने कहा बहुत अच्छी बात है, तो बोले ऐसा एक प्रतिबंध लगा दिया जावे कि हमारे एकांत में बात करने के समय दूसरा कोई नहीं आने पाते। ठीक है, तो पहले के ऊपर लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया और ये नियम बना दिया कि हमारे एकांत में बात करने के समय में कोई आकर विघ्न डाल देगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको फांसी का दंड दिया जाएगा। उसी समय के बीच के वहां समझो कि आपने दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ने कहा कि श्री राम से मुझको बात करनी है। बोले महाराज अभी वे एकांत के मां हैं, प्रतीक्षा करिए। बोले नहीं, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, या तो तुम राम से मुलाकात करा दो और नहीं तो तुम्हारे सब कुल को अभी भस्म कर दो। देखा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात हुई। उन्होंने कहा कि यदि मैं खबर दूंगा तो केवल मेरी मृत्यु होगी, कुल तो बच जाएगा। अच्छा महाराज, अभी मैं महाराज के पास में जाकर के आपकी बात पेश करता हूँ, हुक्म लेकर। लक्ष्मण जी कहकर के महाराज के पास में गए। उधर में महाराज काल से बात कर रहे थे। काल ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का भेजा हुआ आया हूं, 11,000 वर्ष की जो अवधि थी वो समाप्त होगी। ब्रह्मा जी ने आपको याद किया है और मुझको भेज कर ये बात याद दिलाई है, मैं साक्षात काल हूं। तो बोला कि ठीक है, ब्रह्मा जी कह दो कि मैं जल्दी आ। महाराज की बातचीत हो गई, इतने में लक्ष्मण पहुंचा। इस पर ये हाल है, दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर खड़े। बोले अच्छा ले आओ। दुर्वासा आए, बातचीत हुई, फिर काल भी चला गया, दुर्वासा भी चले गए, फिर वशिष्ठ जी के सामने ये सवाल रखे हमारा क्या करना चाहिए। हमारा इकरार था कि जो बीच में आकर के भीड़ निकली उसको मृत्युदंड देना चाहिए, तो लक्ष्मण मेरा सहोदर भाई है, इसको मृत्युदंड में देऊं तो ये भी ठीक नहीं, और नहीं देऊं तो हमारा वचन मिथ्या होता है, ये भी ठीक नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि बात यह है कि छोटे भाई का जो त्याग है वो भी उसके मृत्युदंड के समान, इसीलिए लक्ष्मण का तुम सदा के वास्ते त्याग कर। कहा कि लक्ष्मण मेरे द्वारा तुम सदा के वास्ते त्यागे गए। लक्ष्मण जी जो है बस ये सुन करके के चले। अब भगवान ने सोचा कि अब निमंत्रण तो आ गया, अब सबको ही चलना है, तो भगवान सबको खबर दे दी अपने जो प्यारे हैं शत्रुघ्न हैं वर्तोहां थे ही, और समझो कि जितने अपने प्यारे थे बांदरादि है भविष्यदि है सुग्रीवादी है अंगदादी है सबको खबर पहुंचा दी कि इस प्रकार से हमारा यहां से विदा होने का विचार है, और भगवान एक प्रकार से ये हुक्म कर दिया कि जिसको हमारे साथ में जाना हो वो सरजू के ऊपर चले और सरजू में स्नान करेगा, उसका वहीं शरीर सो रह जाए। अब भगवान गए तो आकाश के बीच के मां देवताओं के विमान आकर इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी भी ऐसे खुद आए और आकर के भगवान से कहा कि प्रभु अब एक प्रकार से थी हम लोग सब आए हैं, आपकी क्या आज्ञा होती है। तो ये कहा कि जितने जो अयोध्यावासी मेरे साथ में आकर के सरयू में गोता लगाया है उनको तो सबको साकेत लोक पहुंचा दिया जाए, और आप जो भगवान खुद जो है जिसका उसी शरीर से थी विष्णु शरीर के मां प्रवेश हो गए। इतनी बात है अपना जो स्वरूप है विष्णु उसके मां प्रवेश हो गई, भगवान का शरीर यहां सरयू के मां गया नहीं, हमारे इस लोक के बीच के मां भगवान श्री राम का शरीर रहा हो और उसके गैर फिर उनकी कोई भी अपने धर्मपत्नी तो सीता थी वो तो पहले ही विदा हो गई, किंतु देह संस्कार किया हो ऐसी कोई बात नहीं। वहां साफ लिखा है वाल्मीकि रामायण के मां कि भगवान सशरीर इसी शरीर से थी आपने उस विष्णु शरीर के मां प्रवेश हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राम का प्रकट होना और अंतर्धान होना आता है, इस शरीर का जन्मना और मरना जैसे हम लोगों का होता है ऐसा नहीं होता। तो अजोपी समय व्य आत्मा भूतानाम इस रूप की सम और प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवानाथमाया न अज हुआ और अविनाशी हुआ और सब भूतों का ईश्वर हुआ भी अपने प्रकृति को बस में कर करके और अपनी योग माया से मैं प्रकट हुआ। तो इसमें प्रकृति और माया दो शब्द आए इस श्लोक में, तो दो का दो अर्थ लेना चाहिए। प्रकृति तो वो मूल प्रकृति, मूल प्रकृति के जिससे ये सब तत्व पैदा हुए मैं तत्व आदि वो मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति को बस न करके के मूल प्रकृति के अंतर्गत सारे तत्व आ जाते हैं, और योग माया वो के जो भगवान की एक विशेष शक्ति है, इस वास्ते वहां समझो कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठा है, तो वहां स्वाम शब्द का अपनी प्रकृति को भस्म में करके और अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, माया से संभवामी आत्म माया, आत्म माने मेरी माया, नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत और मूढ़ोयं ना भी जानाती लोको मामज मभ्यम। ये सातवीं ध्यान की वृत्ति में भगवान ने कहा क्या कि वहां भगवान कहते हैं सातवें अध्याय के 25वें श्लोक में कि नहं प्रकाश सर्वस्य, सबको मैं दिखता नहीं, सबका सबको मैं सबके जानने में नहीं आता, क्यों नहीं आप आते जानने में कि योग माया से मैं आवृत होकर के रहता हूं, इस वास्ते सब कोई मुझको नहीं देख पाते। सब कोई कौन कि मूढ़ों का जो समूह है, मूढ़ो अयम नाम जानाती लोको मामज मध्यम, मैं जो अज और अविनाशी हूं, अजो पीसन अभ्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो पीसन, मैं जो अज और अविनाशी हूं और सब लोगों का महान ईश्वर हूं, ऐसे मेरे प्रभाव को नहीं जानने वाला जो समूह जो है मूढ़ समूह वह मुझको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता कि मैं योग माया करके आवृत रहता हूँ, ऊपर में माया की खोली चढ़ा लेता हूँ। तो भगवान जो इस संसार में अवतार लेते हैं तो अपनी योग माया के पर्दे के मां ढक करके रहते हैं, इसलिए हरेक आदमी उसको जानता है। और भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, वो जान जाता है। तो यहाँ और वहां यहाँ कहीं प्रकरण आया गीता में यही बात आई कि मैं अज और अविनाशी हूँ, इस मेरे स्वरूप को मेरे प्रभाव को मूढ़ लोग नहीं जानते हैं। दूसरी जगह कहा कि नौवीं अध्याय के 11 के शुरू अज्ञानंती मां बूढ़ा मानुषिन तनुमाश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। मम भूत महेश्वरम परम भावम, मेरा जो परम भाव है भूतों के ईश्वरों का भी ईश्वर, भूतों का जो मैं महान ईश्वर हूँ, ऐसा जो मेरा प्रभाव है उसको मूढ़ों का समूह सो नहीं जानता है। इसलिए क्या करते हैं कि वे मेरा तिरस्कार करते हैं। कैसा जो मैं हूँ कि मनुष्य शरीर के आश्रय हूँ तो ईश्वर, किंतु मनुष्य शरीर का आश्रय कर करके जो संसार में प्रकट होता हूँ, ऐसे मेरे वास्तविक जो स्वरूप को प्रभाव को जो लोग नहीं जानते है ना, वे मेरा तिरस्कार करते हैं, अवज्ञा करते हैं। अवज्ञानंती मान अवज्ञा करते हैं, अवज्ञानंती मांग मूढ़ा, मूढ़ों का समूह। अवज्ञानंती मांग मूढ़ा मानुषिन तनुमाश्रितम, तुम ऐसा जो मैं हूँ कि केवल मनुष्य शरीर का आश्रय लिया हूँ, वास्तव में मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य की खोई एक पुरुष से पहली है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि भगवान का जो जन्म है वो अलौकिक है, दिव्य है, हम लोगों का उनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और भी इसके में ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों के शरीर की जो माटी है ये पांच भूतों की है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। तो ये इस वास्ते एक प्रकार से ये क्षणिक है, नाशवान है, और भगवान का जो स्वरूप है वो दिव्य है, और भगवान का स्वरूप चिन्मय है। हम लोगों के शरीर में भगवान के शरीर में भेद है कि भगवान तो स्वयं हुए हैं और हम लोग पराधीन होकर के हुए हैं, और हम लोगों का जो शरीर और शरीरी भेद है, ये शरीर जो है ये जड़ है और शरीरी आत्मा जो है सो चेतन है। इदं शरीरं कौन्ते क्षेत्र मित्र भी धीयते एतद्योति तं परा वो क्षेत्र गये की तरवीर है। इदं शरीरं कौन्ते हे कौन्ते, ये जो शरीर है ये तो क्षेत्र मान खेत है, और इसके भीतर के मां रहने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ शरीर के जानने वाला शरीर का ज्ञाता। तो शरीर तो गे है और आत्मा ज्ञाता है, तत्मान उस ब्रह्म के जानने वालों ने ये बात कही। तद्विद जो है ये कहते हैं कि शरीर तो खेत है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो हमारे लोगों में ये है ना कि शरीर जड़ और आत्मा चेतन, और भगवान जो है स्वयं परमात्मा वे स्वयं चेतन है, और उनका जो वो शरीर है वो भी चेतन है, वहाँ शरीर और शरीर का भेद नहीं है, खुद भगवान ही संसार के बीच में आपने प्रकट होते हैं। इसलिए वे जन्म से मरते नहीं, उनका प्रादुर्भाव और तिरोभाव, उनका एक प्रकार से प्रकट होना और अंतर्धान होना ऐसा है। तो इसलिए ये उनके मां विशेषता होने से उनका शरीर है तो दिव्य है। इस शरीर की जो दिव्यता जान दिया, वह मुक्त कैसे हो जाओ, और इसमें क्या दिव्यता है, बोले और भी इसके मां दिव्यता है। एक तो ये परमात्मा स्वतंत्र है, और एक समझो कि प्रकृति के मालिक है, और एक अपने आप ही ऐसा प्रकट हो जाते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। वे जन्मते से दिखते हैं, विनाश होते से दिखते हैं, किंतु जन्मते और न तो जन्मते न उनका विनाश होता है। वह मनुष्य दिखते हैं किंतु मनुष्य नहीं है, वह साक्षात परमात्मा है। जब हम परमात्मा को यथार्थ रूप से जान जावे, तत्व से जानना यही है कि वह साक्षात परमात्मा है, मनुष्य नहीं। जब परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। तो परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ से जान जाता है तो मुक्त हो जाता है। भक्त्या माम भी जाना कि यावान यस्याश्म तत्वत है ततो माम तत्व तो ज्ञात हुआ और विश्व तदंतरम। गीताध्याय 18 श्लोक 51 में भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभी जाना थी, अभी जाना थी मान अच्छी प्रकार से सब ओर से जान जाता है भक्त्या। तो भक्ति क्या कि पराभक्ति, मद भक्ति लभते पराम। जो उनके श्लोक में भगवान ने कहा ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, न सोचती न कांक्षति तमः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म भूत जो स्वरूप, ब्रह्म भूत जो है, ब्रह्म के मां जिनकी स्थिति हो गई है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति होगी, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा जिनका दृढ़ भाव हो गया ब्रह्म भूत है, वो हर वक्त प्रसन्न रहता है और न शोक करता है न कोई चिंता करता है, और वो सारे भूतों के बीच के मां समझो कि समभाव से अपने आप को देखता है, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। सारे भूतों में अपनी आत्माओं कैसे सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानी के आत्मनि इक्षते यो युक्त आत्मा सर्वत्र संघर्षण है। ये ब्रह्म भूत की स्थिति बतलाई, ब्रह्म भूत शब्द आया 27 के श्लोक में छत्तीस जाके, और ये 29 का श्लोक है, तो 27 के श्लोक में जो ब्रह्म भूत का प्रकरण है वही बात यहाँ 29 के श्लोक में कही कि ब्रह्म भूत जो पुरुष है वो कैसा है कि सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते यो युक्त आत्मा सर्वतर समदर्शन है। सर्वतर समदर्शन है सब जगह के मां समभाव से देखने वाला यो युक्त आत्मा, योग माने ब्रह्म, ब्रह्म के मां जिनकी आत्मा युक्त हो गया था यो युक्त आत्मा पुरुष है, सारे भूतों को अपनी आत्मा में और आत्मा में सारे भूतों को माने देखता है, ऐसा ब्रह्म भूत। उसका फल क्या है कि मद भक्ति लगते परम, मेरी परा भक्ति को प्राप्त होता है। एक तो वेदा भक्ति है नवदा भक्ति, और एक प्रेम लक्षणा भक्ति है, उस नवदा भक्ति का फल। और ये ज्ञान निष्ठा है जो भगवान कहते मैं तुम्हारे को ज्ञान की निष्ठा कहूंगा, निष्ठा ज्ञान से या परा, ये बात कह करके के, और यहाँ परा भक्ति उसका नाम रखा। तो परा भक्ति नाम है ब्रह्म ज्ञान का, परमात्मा का जो परमात्मा का यथार्थ जो ज्ञान है उसका नाम यहाँ परा भक्ति है। इस वास्ते भक्त्या मां भी ज्ञान आती, भक्त्या माने उस ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा को अच्छे प्रकार से जान जाता है, मुझ परमात्मा को माने भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ब्रह्म में प्रतिष्ठा हूँ, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, तो मुझ ब्रह्म को एक प्रकार से थी अच्छे प्रकार से जान जाता है। जैसा जिस प्रकार का जितना जैसा मैं हूँ, साकार निराकार सगुण निर्गुण, इसको यथार्थ रूप से वो जान जाता है, और जान करके फिर मुझ परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से थी ब्रह्म का जो ज्ञान है, ब्रह्म के जानने से क्या होता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म होती ब्रह्मता ब्रह्म हो जाता है। तो यहाँ भगवान का कहना यह है कि वो ब्रह्म में ही हूँ, मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ, मैं आज कृष्ण के रूप में स्थित होकर के जो तुम्हारे को दिख रहा हूँ, अर्जुन को भगवान कहते हैं, वो साक्षात ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है। तो ब्रह्म के ज्ञान से थी परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो ये कोई अनुचित बात नहीं की। अब ये कहते हैं कि ठीक है कि आपका अवतार कब होता है ये जानने की इच्छा हुई, तो दूसरा श्लोक कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, यानी अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ, अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि, धर्म की हानि होती है, पाप का उत्थान होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब तभी मैं संसार के मां अपने अवतार लेता हूँ। क्यों लेते हो? ये परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय और संभवामि जुगे जुगे। साधुओं के उद्धार करने के जो संसार में श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके उद्धार करने के लिए, और जो पापी पुरुष हैं, नीच पुरुष हैं, उनका विनाश करने के लिए, उनको दंड देने के लिए।